ओम शांति। महावीर के जीवन काल में एक बहुत प्रसिद्ध डाकू था और उस डाकू ने, उस बूढ़े डाकू ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें एक आदमी से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है और वो है महावीर, जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर। ये आदमी हमारे पेशे के लिए अत्यंत खतरनाक है। अगर तुमने गलती से भी उसकी कोई बात सुन ली तो खतरा हो सकता है, और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैंने उससे बहुत छिपने की कोशिश की और तुम्हें भी अपने अनुभव के आधार से बता रहा हूँ। यदि तुम्हें एक अच्छा सफल डाकू बनना है तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना। अगर उनकी वो अगर आसपास आ भी गए और कुछ बोल रहे तो अपने कान बंद कर लेना, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, इनकी बातें बड़ी खतरनाक होती है और हमारे धंधे के विरुद्ध है। हो सकता है शायद वो बूढ़ा डाकू महावीर से इसलिए डरता था कि भीतर कोई दिव्यता छिपी हो। उसका बेटा एक सफल डाकू बनता है, एक खौफनाक डाकू। डाकुओं के, एक शुद्ध डाकू के सारे लक्षण उसमें होते हैं, पर उसे अपने पिता की बात याद रहती है हमेशा, क्योंकि जहाँ वहाँ महावीर की चर्चा है और इसे सुनना ही नहीं है। पर अचानक एक दिन कहीं से डाका डालकर वो आ रहा होता है और महावीर बैठे हैं और उसके शिष्य बैठे और लोग बैठे और प्रवचन चल रहा है, और जैसे ही उसे पता चलता है महावीर, वो अपने कान बंद कर देता है, क्योंकि पिता ने कहा था कि कोई ऐसी बात सुनना नहीं। कान बंद कर देता है, फिर भी एक महावीर का वाक्य घुस ही जाता है अंदर। शायद महावीर स्वामी से कोई भूत प्रेत के प्रश्न पूछ रहा होगा, कोई गृहस्थी बैठा हो, और महावीर एक बात कह देते हैं कि देवताओं की परछाई नहीं होती है। बस इतना वाक्य वो डाकू सुनता है और कान बंद कर देता है, आगे खतरा है। पर ये इतनी लाइन अंदर घुस जाती है कि देवताओं की परछाई नहीं होती, महावीर कह रहे हैं। कोई प्रश्न होगा भूत प्रेत संबंधित, वो डाकू कहता है यहाँ से तुरंत जाना चाहिए, और वो अपना डाकू का कार्य करते हुए आगे बढ़ जाता है, बढ़ते रहता है जीवन में। राजा को कब से तलाश थी उस बूढ़े डाकू और उसके बेटे की, पर अब तक कोई प्रमाण नहीं मिल रहा था। बूढ़ा तो मर चुका था, उसका बेटा ज़रूर है, परंतु उसके खिलाफ़ कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि ये डाकू इतने शातिर थे कि पता ही नहीं चलने देते थे, कोई निशान नहीं छोड़ते थे। इस तरह से वो अपना कार्य करता था। पर एक दिन सेना के सिपाही, सेनापति षड्यंत्र करते हैं और उस डाकू को पकड़ ही लेते, उस बेटे को, और वो कहता है मैंने तो कभी डाक डाला ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। राजा को लगता है कैसे इससे उगलवाया जाए, कैसे इसके मुख से बोला जाए, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण एक ही हो सकता है, वो खुद ही कहे। तो राजा युक्ति रचता है और उसे बहुत शराब पिलाई जाती है, कन्याएं आती है, वो नृत्य करती है, अप्सराएं, और इतना उसको उस शराब के नशे में डुबो दिया जाता है। और उसे धीरे धीरे कहते हैं कि अब तुम शरीर छोड़ चुके हो, स्वर्ग में आ चुके हो, यह स्वर्ग की अप्सराएं है, यह स्वर्ग के सुख है, राजमहल। और उसे भी लगने लगता है नशे में कि यही वो है। और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ सदा के लिए रहना है तो तुम अपने जो भी पाप किए हैं वो सुना दो, जो कुछ तुमने किया है, क्योंकि शराब के समय, शराब पीने के बाद सबकॉन्शियस से जो भी है वो सब बाहर निकलता है व्यक्ति का, वो सोशल इनहिबिशन चला जाता है और जो गहराई की बातें हैं वो सब निकलती है। इसलिए कई बार शराबी लोग जो होते हैं ज़्यादा ईमानदार होते हैं, वो अंदर की बातें कहते हैं जो उनके भीतर है, बाकी व्यक्ति छिपा के रखता है, बोलते रहता है पति पत्नी से, पत्नी पति से आई लव यू, जो कि सबसे बड़ा झूठ, आई एम फाइन, ये दुनिया का बड़ा झूठ है। तो शराब के नशे में उसका सारा बाहर निकलने लगता है और वो अब बताने ही वाला होता है कि मैं डाकू हूँ और मैंने इतनी सारे पाप किए, डाके डाले हैं। पर तभी उसे महावीर की वो बात याद आती है कि देवताओं के तो छाया परछाई नहीं होती है और ये जो अप्सराएं इन सब की परछाई दिखाई दे रही है। तो उसका बुद्धि ठिकाने पर आती है, अर्थात मैं स्वर्ग नहीं पहुँचा हूँ, मैं इसी धरती पर हूँ। और वो कह देता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो निर्दोष हूं। राजा के पास वैसे भी कोई प्रमाण नहीं होता है और राजा ने ये सारी युक्तियां जो रची थी, युक्तियां वो सब फेल, और वो वहां से छूटता है और सीधा महावीर के पास जाता है। वो कहता है आपके एक वाक्य ने मुझे आज बचा दिया, मेरी एक सजा कम कर दी, परंतु मुझे पता है मेरे जीवन में कितनी सारी सजाएं हैं, अब आप मुझे उन सब सजाओं से छुड़ाओ और मैं आपके शरण में आता हूं, अब मुझे दीक्षित करो। और वो जैन मुनि बन जाता है। महापुरुषों का एक वाक्य भी ऊर्जा से भरा होता है, किसी का जीवन बदल सकता है, क्योंकि उसमें पवित्रता के प्रकंपन होते हैं। और यदि कोई बुद्ध, कोई तीर्थंकर, कोई ईश्वर पुत्र, कोई अवतार, कोई महान आत्मा, कोई श्रेष्ठ आत्मा, कोई योगी, कोई तपस्वी, कोई उदासी, कोई सन्यासी, कोई तीर्थंकर, पयंबर, पैगंबर, अगर कुछ कहता है और उनके शब्दों में धर्मगुरु इतना प्रभाव होता है और इतनी शक्ति होती है, तो उन वाक्यों में कैसी शक्ति होगी जो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकलती है, स्वयं भगवान के मुख से जो उच्चारण किए हुए महावाक्य है, वो अव्यक्त वाणियाँ, वो साकार वाणियाँ, उनमें कैसा प्रभाव होता होगा, कैसा प्रवाह होता होगा। और उसकी हम संतान हैं, तो हमारे शब्दों में भी, वाणी में भी, लेखनी में भी वो धार हो, वो प्रभाव हो। एक वाक्य किसी का जीवन बदल सकता है, इसलिए ज्ञान का गहरा चिंतन आवश्यक है। ऊपर ऊपर तैरना अर्थात सोचना, परंतु चिंतन करना, मनन करना और गहराई में जाएंगे तो रत्न मिलेंगे, ऊपर ऊपर तैरेंगे तो केवल मछलियाँ, नीचे जाएंगे तो रत्न, उस रत्न की प्यास हो, मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, गोताखोर की तरह, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो, मैं पहला खोजा नहीं अगम भव सागर का, मुझसे पहले कितनों ने इसको था, पर मुझ में उनमें भेद यही, मैं उस गहरे मोती का आशिक हूँ, जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुन मेरी, कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर, कवि कहता है मुझे गहरे जाना होगा, मैं नहीं रुक सकता तट पर, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो, परंतु मुझे तो गहरे जाना होगा, जिस पथ पर कोई पैर निशानी छोड़ गया उस पथ पर चलना मेरे मन को रुचा नहीं, मैं नया मार्ग बनाऊंगा, नया मार्ग, चिंतन का नया मार्ग, मनन का नया मार्ग, स्थिति का नया मार्ग, लेखन का नया मार्ग, हर चीज का नया मार्ग, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बोर्डम सबसे बड़ा अपराध है, बोर हो गए सुन सुन के, सेम 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 सब करते हुए, इसलिए स्पार्क, एन एनिमेशन, एक नई चिंगारी की आवश्यकता है, प्रभु प्रेम के नए संस्करण की आवश्यकता है, न्यू एडिशन ऑफ डिवाइन लव। तो सभी अपनी डायरी खोलेंगे और उसमें एक लाइन लिखेंगे, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, और इसके आगे कुछ और लाइनें लिखेंगे जिसका आखिरी शब्द की होना चाहिए, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, प्रभु से मधुर मधुर मिलन मनाने की, जैसे ये लाइन है, ये नहीं, दूसरी तीन लाइनें जिसका अंतिम शब्द होगा की, सोचो और लिखो, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, डैश 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 की, डैश 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 की, डैश 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 की, सोचो और लिखो। जब हम लिखते हैं तो अपने आप मन एकाग्र होता है और चिंतन चलता है। हो गया, उसको वैसे ही रखेंगे, बाद में पूछेंगे। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो इस ब्राह्मण जीवन में वास्तव में देखा जाए तो दो ही विकार है, एक है राग, एक है द्वेष। जो चीज़ें अच्छी है उनके प्रति राग उत्पन्न होता है, और जो हमें अच्छी नहीं लगती है उसके प्रति द्वेष। ये दो प्रकार की संवेदनाएं हैं, राग और द्वेष। किसी ने अच्छा कहा तो राग उत्पन्न होता है, किसी ने बुरा कहा तो द्वेष उत्पन्न होता है। पूरे शरीर में दो प्रकार की संवेदनाएं हैं मुख्य रूप से, एक तीसरी भी है न्यूट्रल, एक सुखद संवेदना, एक दुखद संवेदना। यहाँ अगर कोई चुभाए, कोई दर्द हो तो ये दुखद संवेदना है। सुखद संवेदना, बहुत सुख अनुभव हो रहा है कहीं, वो सुखद संवेदना। तो जो सुखद संवेदना है उसके प्रति राग उत्पन्न होता है, जो दुखद संवेदना है उसके प्रति द्वेष। तो मनुष्य का चित्त सारे जीवन भर इन्हीं संवेदनाओं में फंसा रहता है। यह इंद्रिय है, यह इंद्रिय विषय, या इंद्रिय इंद्रिय विषय, जैसे ही इंद्रियों के विषय इंद्रियों से टकराते हैं, संवेदना का जन्म होता है। कोई आवाज़ कान को टकराया, कोई स्पर्श चमड़ी को टकराया, कोई भोजन जिह्वा को टकराया, कोई दृश्य आँखों से टकराया, कोई सुगंध नाक से टकराई। ये विषय, पांच विषय, पांच इंद्रियों से विषय वस्तुओं से टकराते हैं। जैसे ही टक्कर होती है, संवेदनाओं का जन्म होता है। संवेदनाएं दो प्रकार की है, या तो सुखद या तो दुखद। जो जो सुखद संवेदनाएं उसके प्रति राग उत्पन्न होता है, और जो दुखद संवेदनाएं उसके प्रति द्वेष। और यहीं से सारा खेल चालू होता है बंधनों का, यहीं से सारा खेल चालू होता है ग्रंथियों का। जो कल सुबह भी कहा था, निर्ग्रंथ, महावीर को और बुद्ध को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ, जिन्होंने अपने अंतर की, भीतर की सारी ग्रंथियां से वो मुक्त हो गए। भीतर के कॉम्प्लेक्सेस, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, इसी में हम फंसे रहते हैं। इसलिए हिंदी में तीन शब्द है, एक राग, एक वैराग, और एक तीसरा शब्द भी है, वीतराग। वीतराग एक अलग शब्द है जिसका अर्थ होता है साक्षी। वो ना राग है ना विराग है, क्योंकि विराग शब्द, वैराग शब्द भी राग का अपोजिट है। बीच में वो वस्तु है, एक वस्तु, एक व्यक्ति उसमें डूब गया और दूसरा उससे भाग गया, पर दोनों का चिंतन उसी के बारे में चल रहा है। एक गृहस्थी, एक सन्यासी, चिंतन उसी भोग वस्तु के विषय में कर रहे हैं। एक उसमें डूबा है, एक उससे भाग गया है, एक सीधा खड़ा है, एक शीर्षासन कर रहा है, पर बुद्धि वही है। इसीलिए एक तीसरा शब्द है वीतराग, दोनों से परे। उसका अभ्यास कैसे करना वो आज हम देखेंगे। उसके मुख्य रूप से दो अभ्यास हैं, और दोनों ही बड़े पावरफुल अभ्यास हैं, दोनों ही। और दोनों ही अभ्यास रोज की दिनचर्या में हमें इंक्लूड करना है। और वो हो जाए, वो योग का भाग नहीं है, परंतु साक्षी स्थिति को पुष्ट करने के लिए वो बहुत आवश्यक है। भीतर के उस वीतराग भाव को पुष्ट करने के लिए, उस रियल बेहद का वैराग। वीतराग शब्द के लिए दूसरा शब्द है बेहद का वैराग। वैराग नहीं, वैराग में तो गड़बड़ है। राग और वैराग, बाबा यूज करते शब्द बेहद का वैराग, सन्यासी यूज करते वीतराग। वेदांत में साक्षी कहा गया है, दृष्टा, दृष्टा भाव। तो वैराग अर्थात घृणा उत्पन्न करना नहीं है, जो व्यक्ति घृणा उत्पन्न करता है उसको फिर आकर्षण हो जाता है उसका बाद में। यदि हमारी किसी से दोस्ती है और हम चाहते हैं उससे दूर हो जाए, उससे झगड़ा करते हैं, झगड़ा करने के बाद फिर से राग और पुष्ट होता है, फिर से चालू हो जाता है, आई एम सॉरी, फिर उधर से सॉरी, फिर इधर से सॉरी, फिर से एक नया बंधन बन जाता है। इसलिए छूटना मुश्किल हो जाता है। संसार में फिर भी छूट जाते हैं, संसार के जो लव अफेयर्स होते हैं उसमें ब्रेकअप हो जाता है, फुल स्टॉप, वो इधर इधर। पर ब्राह्मण परिवार में ब्रेकअप ही नहीं होता है, क्योंकि वो लोग तो नाम दे देते हैं, हमारा लव था, अफेयर था, यहाँ ऐसा देते ही नहीं, इसीलिए वो अनंत काल तक चालू रहता है, वो टूटता ही नहीं, वो छूटता ही नहीं, वो ख़त्म ही नहीं होता है, उसके रूप बदलते रहते हैं, क्योंकि फिर हम उसमें ज्ञान और योग सब डाल देते हैं बीच में। ठीक है, आज से हम लोग ज्ञान की ही चर्चा करेंगे, और वो कितना समय चलता है, थोड़ा समय, चलो हम लोग योग ही करेंगे साथ में, दो व्यक्ति जो बंधन में है या मोह में है, इसलिए ब्राह्मण परिवार में ब्रेकअप नहीं होते। वो बंधन चालू ही रहता है, और हमें बताया गया सबके लिए शुभ भावनाएं रखो, तो जिससे मोह है और उससे टूटना है उसके प्रति घृणा भी नहीं कर सकते, फिर श्रीमत बीच में आ जाती है, कैसे उससे घृणा करे, कैसे उससे नफरत करे, और हम रहम दिल भी है, और कोई सॉरी कहता है तो हमें माफ भी करना है, कॉम्प्लिकेटेड है सब, है ना। इसलिए दो मुख्य अभ्यास हैं। यह अभ्यास वो नहीं है जो शायद आपने अब तक सुने, और वो भी अच्छे अभ्यास है, ये संसार का विनाश होने वाला है, इसके प्रति दोष दृष्टि रखो, इसमें सुख कम है दुख ज़्यादा है, ये काकविष्ठा समान सुख है, यहाँ प्राप्ति है ही नहीं, ये सारे जो सुख है इसमें एडिक्शन है, उसमें क्रेविंग है, उसमें एक आदत बन जाती है, उसमें बेचैनी है, उसमें पश्चाताप है, उसमें भारीपन है, उसमें दुख है, ये सारे पॉइंट्स हैं, पर हम इन पॉइंट्स की चर्चा आज नहीं करेंगे। हम वैराग उत्पन्न करेंगे शरीर को भूल कर नहीं, शरीर को याद करते हुए। कैसे उत्पन्न करेंगे वैराग? शरीर को और अच्छे से याद करते हुए। और शरीर और आत्मा, इसके बीच दो लिंक है। पहली लिंक है श्वास, पहला क्या है? ब्रेथ। जैसे ही विकार अवचेतन में उत्पन्न होता है, श्वास की गति बदल जाती है। क्रोध उत्पन्न हुआ, श्वास की गति बदलती है। लोभ उत्पन्न हुआ, श्वास की गति बदलती है। काम उत्पन्न हुआ, सबसे अधिक बदल जाती है काम, सबसे तेज श्वसन क्रिया हो जाती है। अहंकार आया, श्वास बदलता है। हलचल हुई, श्वास बदलता है। भय उत्पन्न हुआ, श्वास चेंज। इसलिए सबसे पहला अभ्यास श्वास को देखना। पहला अभ्यास कौन सा है? वैराग उत्पन्न करने के लिए, अवचेतन से जुड़ के लिए। जिसने अपने श्वास को देखा वो अपने विकारों को देख लेता है। श्वास को देखते देखते विकार दिखने लगेंगे। हाँ, अभी कैसे देखना है? तो सारा ध्यान ये होठ जो है इसके ऊपर, और नाक जो है उसके नीचे का ये जो स्थान है, यहाँ केवल देखना है, श्वास आ रहा है जा रहा है, श्वास आ रहा है जा रहा है। उसके साथ कुछ भी जोड़ना नहीं है, कोई शब्द, कोई मंत्र, कोई नंबरिंग, पॉजिटिव निगेटिव, शुभ भावना आ रही है, दुर्भावना जा रही है, कुछ भी नहीं। क्या देखना है? शुद्ध श्वास को देखना है, केवल श्वास। और वो देखते देखते एक अनुभव होगा, और वो अनुभव कि ये सबसे कठिन काम है। हमारा मन हमेशा भागना चाहता है, या तो भविष्य में या तो अतीत में, और इसका अभी अभी हम सभी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, तो सभी स्थिर बैठेंगे, आँखों को बंद करेंगे। ये राजयोग का अभ्यास नहीं है, एकाग्रता का अभ्यास है। और सारा ध्यान श्वास की तरफ। ऊपर वाले होंठ के ऊपर, नासिका के नीचे का स्थान, पहले एक दो श्वास थोड़े तेज ले लेंगे ताकि पता चले श्वास है, और अब केवल श्वास को देखना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। अपने श्वासों पर पहरा लगाना है, एक भी श्वास बिना जानकारी के ना अंदर आए ना बाहर जाए। मौन, श्वास आ रहा है, जा रहा है। मन यदि भटकता है उसे फिर से श्वास की ओर लाना है, कम से कम एक मिनट तक। लक्ष्य है टोटल 1 मिनट, फुल श्वास की ओर एकाग्र। दाई नासिका से आ रहा है, बाई नासिका से, उसे कंट्रोल नहीं करना है, प्राणायाम नहीं करना है, मैनिपुलेट नहीं करना है, उसे वश में नहीं करना है। सहज स्वाभाविक श्वास, जैसे आ रहा है आने दो। गहरा है, उथला है, छोटा है, बड़ा है, एक भी श्वास बिना जानकारी के नहीं। जब श्वास एकदम शांत हो जाए, एक दो श्वास तेजी से लेना है ताकि महसूसता हो, और कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई एडिशन नहीं, श्वास आ रहा है, जा रहा है। श्वास ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। श्वास लेते लेते ही अशरीरी अवस्था आ रही है। ओम शांति। तो सबसे पहला अभ्यास है ब्रेथ अवेयरनेस, श्वासों को देखना। देख पाए? जैसे ही देखने जाते हैं मन भटकना चालू होता है। हाँ, उसे कोई आधार यदि मिल जाए तो वो स्थिर हो सकता है, 1 2 3 4 1 2 3 4, परंतु फिर ध्यान उस 1 2 3 4 पर चला जाएगा। केवल श्वास, शुद्ध श्वास, बिना किसी एडिशन के इस अभ्यास को करना है। और कब करना है? दिन में कभी भी बीच में, 1 मिनट, जब अत्यंत उत्तेजना हो रही है, किसी को काम दिया और उसने किया ही नहीं और एकदम इरिटेशन होने वाला है, उस समय बैठो और श्वास। स्टेशन पहुंचना है, लेट हो गया है तो कैसे होता है हलचल? उस समय क्या करना है? श्वास, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड से श्वास जुड़ा हुआ है। हम डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी आदेश नहीं दे सकते। अचानक घबराहट होती है, अचानक कोई परिस्थिति आ गई तो एकदम से डर लगता है, श्वास। रात में कोई स्वप्न देखा और एकदम उठे, धड़धड़ 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 धड़कन धड़कन बड़ी हुई, क्या करना है? श्वास। इस श्वास को देखते 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 अवचेतन शांत होते जाएगा, अंतर्मन, क्योंकि अंतर्मन को हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। हाउ टू एक्सेस सबकॉन्शियस माइंड, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लोग व्यसन छोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं करते, पर छूटता है क्या? बहुत मुश्किल है। तीन तीन मास, छः छः मास, हमने अपने ही कितने माउंट में इतने सारे लोग हैं ये सब दारू वगैरह पीने वाले, कितनों को भेजा रिहैब सेंटर में, 3 मास रह के आए रिहैब में, एक एक मास का 30-30, 40 हज़ार रुपये खर्चा। घर में माँ अकेली बेचारी, बेटा पीते रहता है, कोई कमाने वाला नहीं, कहाँ कहाँ से पैसे जोड़ के उसको भेजा। 3 मास ना मोबाइल हाथ में, ना रिश्तेदारों से संपर्क, सुबह प्राणायाम, योगासन, एक्सरसाइज, लेक्चर्स, एक्टिविटीज़, ये सब। 3 मास के बाद जब बेटा वापस आया, उसी दिन से पीना चालू। इतना आसान नहीं है व्यसनों से छूटना। एक पेशेंट तो हमेशा आता है 2-3 मास में, डॉक्टर साहब मैं वापस खाई में गिर गया हूँ, मुझे निकालो। और उसे पूर्ण पता रहता है कि अब नहीं करूँगा, अब बिल्कुल नहीं करूँगा, अब खाई में इस बार बस निकाल दो, अब मैं लिख के देता हूँ मैं नहीं करूँगा, प्रतिज्ञा करता हूँ ये करूँगा वो करूँगा। 2-3 महीना ठीक रहता है, फिर से चला जाता है, क्योंकि ये सारे कहाँ जुड़े हुए हैं? अंतर मन से। और अंतर मन ऑटोमेटिक, वो कहाँ से एक्टिवेट हो जाता है पता नहीं चलता है। व्यक्ति ने दारू छोड़ दी, कितना समय बिना पिए रहा, और अचानक एक दिन कोई दर्दनाक घटना हो गई जीवन में, पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, पति ने शरीर छोड़ दिया, या और कुछ हो गया, उस बेचैनी का क्या करे? उस बेचैनी से छूटने के लिए फिर वो या तो काम विकार, या तो मूवीज एंटरटेनमेंट, या कोई व्यसन, ये 2-3 चीज़ों का आधार लेता है। हाँ, अगर वो भक्त है तो वो भक्ति में जाएगा, भक्ति करेगा। तो जितने भी एडिक्शंस हैं उनका संबंध सबकॉन्शियस से है, सबकॉन्शियस रिवायरिंग। इतनी बार चल चल के वो एक मार्ग बन गया है, पगडंडी बन गई है, अपने आप व्यक्ति जाता है उस तरफ, अपने आप। जैसे वो बीड़ी सिगरेट के नशा है, उसी तरह बाकी विकार भी है, काम विकार भी वैसा ही है, क्रोध भी वैसा ही है, लोभ भी वैसा ही है, अहंकार भी वही है, सेम। इसलिए अभ्यास कौन सा है? श्वास को देखना। कब करेंगे? बीच बीच में करेंगे। कहाँ तक लेके जाना है? 1 मिनट तक भी लेके गए तो इसको सफलता मानी जाएगी, 1 मिनट। क्योंकि आप अगर देखो, 1 मिनट ध्यान करो, श्वास को देखो, तुरंत मन फ्यूचर में जाएगा या पास्ट में जाएगा, कुछ तो करेगा, इधर या उधर। उससे पता चलता है ये मन कितना रेस्टलेस है, कितना बेचैन है। स्वामी विवेकानंद ने एक किताब में, अपनी किताब में, मन की तुलना बंदर से की है। बंदर कैसा है सब प्राणियों में? चंचल, सबसे चंचल। सो माइंड इज लाइक मंकी। अब सोचो ऐसे बंदर को एक मधुमक्खी काटती है, तो उसकी चंचलता, बेचैनी और बढ़ती है। और सोचो उस बंदर को जिसको मधुमक्खी ने काटा है, उसमें किसी ने शराब पिला दी उस बंदर को, और फिर सोचो ऐसा एक बंदर जिसको मधुमक्खी ने काटा और जिसको किसी ने शराब पिला दी, उसमें एक प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाए। What state can describe the restlessness of this monkey? Such is the restlessness of the mind. हमारा मन भी ऐसा ही, इतना पहले से ही उसका स्वभाव चंचल है, फिर उसको इच्छा की मधुमक्खी काटती है, फिर आकांक्षा की कोई दारू पिला देता है, कामवासना का भूत उसमें प्रवेश करता है, अब इसको वश में करो, कठिन काम है। चंचल मन कृष्ण, हे गोविंद मैं क्या करूं, ये मन बहुत चंचल है, कैसे इसको वश में करूं? और उत्तर सभी को पता है, गीता का अभ्यास और वैराग। अभ्यास है न तु कौन्तेय, वैराग्ये न च गुह्यते, इन दो से उसको वश में कर सकते हो। प्रैक्टिस चाहिए, तो सबसे सरल प्रैक्टिस है श्वास को देखना। श्वास को देखते देखते सबसे पहला काम क्या होगा, हम विकारों को देखने लगेंगे। दूसरा काम क्या होगा, हम अवचेतन से जुड़ने लगेंगे, अंतर्मन से। तीसरा कार्य, उस अवचेतन में जो हलचल है उसको भी हम शांत कर सकते हैं। केवल देखने मात्र से। और चौथा, साक्षी भाव पुष्ट होगा, क्योंकि देख कौन रहा है, आत्मा। किसको देख रहा है, श्वास को देख रहा है, और कोई काल्पनिक वस्तु को नहीं देख रहा है, श्वास है। आत्मा और शरीर के बीच में प्राण, श्वास है, उसको हम देख रहे हैं। तो यह है सबसे पहली विधि। अब दूसरी विधि के लिए ये पहली विधि जो है अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए रोज एक घंटा बैठकर इसका अभ्यास करना है, श्वास को देखने का। सुबह एक घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, शाम को आधा घंटा, 15 मिनट, या दोपहर को जब समय मिले बैठो और श्वास को देखते रहो। और उसको परिभाषित नहीं करो, केवल ठीक है, तेज है तो तेज, मंद है तो मंद, वो जो जैसा है। अगर बहुत शांत हो गया तो एकदम खुश भी नहीं होना है, आहा हा कितना शांत, आ रहा है कि जा रहा है पता भी नहीं चल रहा है। और कभी एकदम, जितना हमारा श्वास स्लो होता है उतना वो व्यक्ति योगी होता है। जो कुत्ता होता है उसका श्वास कैसे होता है, ऐसे करता है ना, कितनी कितनी उम्र होती है कुत्ते की। और कछुआ, कछुआ कितने, कछुए की उम्र कितनी है, 200-300, उसका रेस्पिरेटरी रेट 4 per minute, मनुष्यों का रेस्पिरेटरी रेट 12-20, आइडियली 15 या 16 या 18 श्वास आते हैं जाते एक मिनट में मनुष्यों का। हाँ, जिनको दमा की बीमारी हो जाती है, COPD, तो ये रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, इसको हम डिस्निया कहते हैं मेडिकल में, उससे ही पता चलता है ये पेशेंट ठीक नहीं है, श्वास फूल रहा है, एडमिट करना है। तो नॉर्मल रेट वो है। और जो योगी जन होते हैं उनका धीरे धीरे और कम और कम, इसलिए लंबी उम्र होती है उनकी। हिमालय पर बैठ कर तपस्या करते हैं, अपने श्वासों को साधते हैं वो। तो श्वास की साधना एक बहुत बड़ी साधना है। प्राणायाम अलग है, अभी जो बताया वो अलग। प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, वो किया जा सकता है, पर ये प्राणायाम नहीं है। दिस इज ब्रेथ अवेयरनेस, ये मेडिटेशन है। तो सबसे पहला अभ्यास श्वास। ये अभ्यास हम किस लिए अभ्यास कर रहे हैं, वैराग के लिए। और जो दूसरा है उसका, ये अभ्यास केवल एक भूमिका मात्र है, और वो सबसे पावरफुल अभ्यास है, और वो अभ्यास है बॉडी स्कैनिंग, इस पूरे शरीर का निरीक्षण करना ऊपर से लेकर नीचे तक। शुरुआत करेंगे श्वास से, क्योंकि हम अपने अवचेतन से जुड़ने के लिए दो ही आधार है, एक है संवेदना, एक है श्वास। जैसे महात्मा बुद्ध बैठे हैं और एक मक्खी आकर बैठती है प्रवचन देते हुए, उनका हाथ जाता है और मक्खी को हटाते हैं, थोड़ी देर के बाद मक्खी है नहीं फिर भी वो हाथ ले जाते हैं, आनंद पूछता है, ये हाथ वापस क्यों लेके गए? वो कहते हैं कि पिछली पहली बार जो मैंने किया था बेहोशी में किया था, अपने आप अभी होश में करने का अभ्यास कर रहा हूं। जैसे रात में हम सो रहे हैं, ठीक है, और बहुत ठंड लगने लगे तो हम ओढ़ लेते हैं ना, वो क्या सोच के ओढ़ते हैं? कैसे? अपने आप, अपने आप। संवेदना है वो, ठंड ये संवेदना है। चमड़ी पर जो कुछ हो रहा है संवेदना है। यहाँ दर्द होता है संवेदना, यहाँ खुजली होती है संवेदना, धड़कन बढ़ती है संवेदना, फड़कन धड़कन, दुखाओ दबाओ, यहाँ कुछ हो रहा है संवेदना है। और हमने कहा संवेदना दो प्रकार की है, सुखद दुखद। अगर वह सुखद है तो क्या होता है उसके प्रति? राग। अगर दुखद है तो उसके प्रति द्वेष। कुछ कुछ संवेदना तीसरे प्रकार की होती है, असुखद अदुखद, न्यूट्रल। तो अभी ये जो दूसरा अभ्यास है इसमें हमें क्या करना है? संवेदनाओं को देखना है। कैसे देखेंगे? पूरे शरीर का निरीक्षण करके। स्टेप नंबर वन, किसी एक आसन पर बैठ जाना है परंतु स्थिर, हिलना डुलना नहीं। दूसरा अभ्यास है यहां से चालू करना, सिर के सिरे से, फिर आना चेहरे के ऊपर। यहां क्या हो रहा है? गाल, नाक, कान, एक एक अंग में क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संवेदना। ऐसा कोई अंग नहीं है शरीर का जहां संवेदना उत्पन्न नहीं हो रही है। अभी आप बैठे हैं तो दर्द की संवेदना हो रही है घुटनों में, कुछ तो हो रहा है, दैट इज संवेदना। संवेदना अर्थात इंग्लिश में कहते हैं सेंसेशन। एक्चुअली संवेदना शब्द था ही नहीं, वेदना शब्द था, परंतु वेदना शब्द दुख को दर्शाता है इसलिए उसको संवेदना बना दिया। उसके लिए दोनों है उसमें, सुखद और दुखद। तो क्या करेंगे? यहाँ से चालू करेंगे शरीर को देखते हुए, फिर चेहरे को देखेंगे, गले की तरफ आएंगे, फिर राइट साइड पूरा, यहाँ से हाथ, फिर लेफ्ट साइड, फिर छाती, पीठ, छाती, पेट, पीठ, कमर, फिर पैरों का राइट लेग, लेफ्ट लेग। तो ये है वन राउंड। इस वन राउंड को कम से कम 10 मिनट लगने चाहिए आइडियली। और फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, केवल संवेदनाओं को देखते रहना है। संवेदना क्या है? दर्द एक संवेदना है, खुजली संवेदना है। देखना है अगर घुटने में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, उस दर्द को देखना है क्या होता है। देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। तो जो नीचे बैठे एक बार खड़े हो जाएंगे और फिर बैठो अगर पैरों में दर्द हो रहा है तो, और इनको चेयर पे अगर बैठना है तो चेयर पे बैठ जाओ। तो अभी हम अगले 5 मिनट तक ये अभ्यास करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे। सभी स्थिर बैठेंगे और ये करते करते अनुभव होगा कि हमने कहीं पर भी नहीं कहा कि मैं आत्मा हूं, परंतु ये अभ्यास करते 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 टोटल अशरीरीपन आ जाएगा थोड़ी देर में, हमारे न चाहते हुए भी। ठीक है, रेडी? लाइट्स ऑफ। सभी स्थिर, सारा ध्यान श्वास की तरफ। अगले 10 मिनट के लिए शरीर को हिलाना नहीं है, जहां पैर रख दिया वही रहेगा, जहां हाथ रख दिया वही रहेगा। 10 मिनट के लिए आंखें बंद और केवल श्वास को देखेंगे। श्वास आ रहा है, जा रहा है। प्रत्येक श्वास की जानकारी आया गया, पूर्ण जानकारी, पूर्ण होश श्वास पर पहरा, और कोई विचार नहीं, केवल श्वास। अब सारा ध्यान सिर के सिरे की ओर, मस्तिष्क, चेहरा, आंखें, अपने मन को दौड़ाएंगे, होंठ, गाल, कान, पूरा चेहरा देखेंगे, तटस्थ भाव से देखेंगे कौन सी संवेदना कहाँ है, कहीं दर्द है, कहीं दबाव है। केवल देखना है, देखकर आगे बढ़ जाना है। गर्दन, दाया कंधा एक एक इंच आगे सरकना है, अपने शरीर में एक एक अंगों को देखते हुए, कोहनी और आगे, कलाई, हाथों की उंगलियां, बाया हाथ, कहीं दुखाव है, कहीं जलन है, कहीं कंपन है, कहीं खुजली, केवल देखना है। कपड़ों का स्पर्श फील करना है, हाथों का स्पर्श, छाती, कौन सी संवेदना है, उस संवेदना को आइडेंटिफाई करना है, यहाँ ये हो रहा है, और आगे बढ़ जाना है। पेट का भाग, पूरा पेट, पीठ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। दाया पैर ऊपर से नीचे तक, घुटना, पिंडली, ठकना, पैरों की उंगलियां, तलवे, उसी तरह लेफ्ट लेग, शरीर का एक भी हिस्सा छूटने ना पाए। जो जो हिस्सा छूट गया है उसको साक्षी भाव से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोबारा चालू करेंगे सिर के सिरे से, सेकंड राउंड। आंखें, नाक, मुख, कान, त्वचा, गर्दन की संवेदनाएं, दोनों कंधे एक साथ, दोनों हाथ और छाती एक साथ, दोनों हाथ और पेट एक साथ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, जो हो रहा है उसे देखना है। प्रत्येक संवेदना अनित्य है। अभी अभी दर्द वो विलीन हो रहा है। पीठ कमर दोनों पैर एक साथ, दोनों घुटने एक साथ। दोनों पैर, पैरों की उंगलियां, फिर से तीसरा राउंड। सिर के सिरे की ओर, सारा सिर, गर्दन, कंधे, दोनों पैर, कहीं सुखद संवेदना, कहीं दुखद, कहीं न्यूट्रल, पर इन सब का स्वभाव आना और जाना है, उदय और व्यय। संवेदनाओं का जन्म हो रहा है और संवेदनाएं नष्ट हो रही है। कहीं ना कहीं शरीर में दर्द हो रहा है, उस दर्द को साक्षी होकर देखेंगे। अजीब अजीब सेंसेशंस का सामना होगा। कहीं झटका लगेगा, कहीं पेट में कुछ होगा। केवल देखना है। फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक धारा प्रवाह, एक साथ सिर, गर्दन, छाती, हाथ, पेट, हाथ, दोनों पैर, एक सेकंड में ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर जाना है। शरीर जैसे है ही नहीं। और अब संकल्प करेंगे, मैं रुकुटी के मध्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ओम शांति। आंखें खोलेंगे, तीन साधु श्रीलंका जाते हैं और वहाँ उनको एक खेत दिखता है और किसान से कहते, ये स्थान बहुत अच्छा है, कम क्या हम यहाँ ध्यान करें, वर्षा ऋतु है, सन्यासियों का नियम है, वो एक ही जगह रुकते हैं उस समय। तो वो किसान बहुत खुश होता है और तीन साधुओं को तीन कुटिया बना कर देता है और वो लोग वहाँ रहते हैं। 3 मास पूरे होते हैं, साधना काल समाप्त होता है। आपस में बातें करते हैं, कहो कैसी रही साधना। पहला कहता है, मैंने अपने मन को इस खेत से बाहर कहीं जाने ही नहीं दिया, कहीं नहीं जाने दिया, बांध के रख दिया मन को। दूसरा कहता है, मैंने अपने मन को इस कुटिया के बाहर कहीं जाने नहीं दिया। तीसरा कहता है, मुझे तो बहुत आनंद आया, मैंने अपने मन को केवल इस शरीर के अंदर ही रखा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, कहीं कहीं जाने नहीं दिया। और जैसे जैसे साधना आगे बढ़ेगी, साक्षी भाव पुष्ट होते जाएगा और हमारी बैठक बढ़ती जाएगी। तो इस बैठक को कहा जाता है अधिष्ठान की बैठक। जैसे बुद्ध बैठे हैं, महावीर बैठे हैं, ब्रह्मा को बैठे हुए देखते हैं, स्थिर बैठे, शरीर की कोई हलचल नहीं है, स्थिर पर्वत की तरह, जैसे रीढ़ की हड्डी सीधी, एकदम स्थिर। और राजयोग का अभ्यास कई सारी स्टेजेस से गुजरता है, और राजयोग के अभ्यास में सबसे पहली स्टेज श्वास को देखना, इसको एडिशन कर सकते हैं। पहले चालू कहाँ से करेंगे, आए नहीं, भाग भाग के आ रहे और बैठे और बाबा के सामने, बाबा गुड मॉर्निंग, मैं आत्मा हूँ, अभी वो जो कॉन्शियसनेस है वहीं से बाहर नहीं निकले, आत्मा में आए ही नहीं है। पहले श्वास को देखो, श्वास धीरे धीरे शांत हो जाएगा। एक स्टेप नंबर टू, बॉडी स्कैनिंग, ऊपर से नीचे तक इंच इंच स्कैन करना है। हायर स्टेजेस में हमने ऐसे साधकों को देखा है, सुबह बैठते 2 बजे बैठते, रात को 10 बजे तक बैठे के बैठे, हम कहते पैर नहीं दुखते, वो कहते आनंद इतना आता है, ना आत्मा का पता है ना परमात्मा का पता है, तपस्या चालू है, आनंद ही आनंद, धारा प्रवाह इस अनुभव को कहा जाता है। लंबा समय बैठने के बाद केवल तरंगे ही तरंगे दिखाई देती है, ये शरीर रहता ही नहीं, शरीर के टुकड़े टुकड़े होते हैं, विघटन होता है, टूटते जाता है, ये हाथ जो रहता है ये स्थूल नहीं रहता है, फिर ये हाथ और ये पैर, ये शरीर, हमारा जो शरीर है अंगों से बना हुआ है, चमड़ी है, चमड़ी के अंदर अंग है, अंग जो बने हैं सेल से बने हैं, सेल्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, फिर सेल्स, सेल्स के अंदर एटम्स, एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उसको भी तोड़ा जाए तो केवल तरंगे है, अर्थात ये जो माइक है और मैं हूँ एक ही है, इसमें भी वही तरंगे हैं, मुझ में भी वही तरंगे, और सारा यूनिवर्स तरंगों से बना हुआ है, तो सूक्ष्म स्थूल कुछ है ही नहीं, सब स्थूल। तो इस अभ्यास से धीरे धीरे शरीर के टुकड़े 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 होते, विघटन 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 विघटन, और एक धारा प्रवाह का अनुभव होता है, केवल तरंगे ही तरंगे, केवल तरंगे ही तरंगे, केवल तरंगे ही तरंगे। स्वामी विवेकानंद बैठे हैं और उनके गुरु उनको बिठाते हैं और वो चिल्लाते हैं, मेरा शरीर कहाँ है, गुरु ने हाथ रख दिया छाती पर और वो चले गए, वो चिल्ला रहे हैं मेरा शरीर कहाँ है, मेरा शरीर कहाँ है, मुझे मेरा शरीर दो, शरीर ही खत्म, क्योंकि शरीर स्थूल रहा ही नहीं है, केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, धारा प्रवाह, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, करते करते अनुभव होगा एक आनंद अवस्था आ गई है, शरीर एक एक इंच का स्कैन करना है, टुकड़ा टुकड़ा, एक भी इंच छूटने ना पाए, इतना 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 इतना, यहाँ दर्द हो रहा है घुटने में, उस दर्द को देखते रहो, उस दर्द के एपिसेंटर को देखते रहो, कहाँ है वो दर्द, उसका केंद्र कहाँ है, अच्छा यहाँ हो रहा है, उसके आजू बाजू की एरिया को स्कैन करो मन की आँखों से, और देखेंगे धीरे धीरे वो दर्द खत्म, वो दर्द शिफ्ट हो रहा है। अब दूसरा, ये जो संवेदना है उसके कम से कम 9 चैप्टर्स है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक ही बात है कि कोई भी संवेदना स्थिर नहीं है, जैसे बादल स्थिर नहीं है, जैसे कोई मेहमान आते और चले जाते, वैसे संवेदना पूरे शरीर में अनित्य है। हम जो कहते हैं ना संसार अनित्य है, संसार अनित्य, अरे क्या अनित्य है, हम कहते हैं शरीर अनित्य, शरीर का क्या अनित्य है, ये संवेदनाएं अनित्य है। तो आत्मा और शरीर को जोड़ने वाली 2 चीजें हैं, एक श्वास और एक संवेदना, और इन दोनों को साक्षी होकर हम देखते हैं तो अवचेतन मन से हम जुड़ते हैं। तो 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा यह अभ्यास करना चाहिए, और वो अपने कमरे में करो, दोपहर के समय बैठ जाओ, देखो क्या होता है, उठना ही नहीं, चेयर पे बैठो, नीचे बैठो तो बहुत अच्छा, श्वास से चालू करो और पूरे शरीर का देखना है, एक धारा प्रवाह का अनुभव होगा धीरे धीरे। और उसके बाद तो राजयोग की दूसरी स्टेज है, पहला श्वास, दूसरा ब्रेथ अवेयरनेस, थर्ड स्टेज मैं आत्मा हूँ। अब आ जाओ आत्मा पर, हम आते हैं सीधा आत्मा पर, इसलिए ऊपर टच कनेक्ट भी नहीं हो पाते। पर चौथी जो स्टेज है वो है भक्ति, राजयोग की चौथी स्टेज है भक्ति, अर्थात सूक्ष्म वतन में भगवान बाप दादा को देखना, उससे सारे संबंध जोड़ना, उससे वरदान लेना, उससे तिलक लेना, डांस करना, जो करना है बातें करना, संवाद करना, रूढ़िहान करना, वो सारी बातें, दैट इज स्टेज नंबर 4। स्टेज नंबर 5 परमधाम, जिसमें भी केवल एक ही अवस्था बीज रूप, उसका अधिक अभ्यास करना। अभी हम यम सेंटर पर गए थे, वहाँ पर हम अलग अलग 14 अवस्थाओं की चर्चा हुई सुबह, पर यहाँ पे हमें परमधाम में उसका ही ज़्यादा अभ्यास करना है। बीज हूँ मैं बस, और पहले ही हमने बॉडी स्कैनिंग कर लिया है, और पहले ही हमारा बिना आत्मा के ही अशरीरी अवस्था आ चुकी है। अभी जो किया उसमें आई क्या अशरीरी अवस्था? आई कि नहीं आई? ना, अपने आप आ गई, आत्मा तो कहा ही नहीं, वो तो लास्ट में केवल कहा, उसके पहले, क्योंकि शरीर में स्थूलता टूटते ही, विघटन होते ही हमें तरंगों का अनुभव होने लगता है, वेव्स एंड वेवलेट्स। परमधाम, परमधाम से फिर और नीचे आओ, फिर देव, और नीचे आओ पूज्य स्वरूप, और नीचे आओ ब्राह्मण स्वरूप, और फरिश्ता, और फरिश्ता में ढेर सारे काम करने हैं, पूरे विश्व को सकाश, ढेर सारे कार्य है। तो वैराग 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 हम जो कह रहे हैं, वो वैराग कौन सा वैराग है? स्त्री से वैराग, पुरुष से वैराग, वस्तुओं से वैराग, पैसे से वैराग, या सुख सुविधाओं से वैराग? व्यक्ति जहाँ जाएगा ये सब निर्माण करेगा। वैराग है सुखद और दुखद संवेदनाओं से वैराग, ये शरीर में जो संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है उनसे वैराग, उनके प्रति साक्षी भाव, उनके प्रति भोक्ता भाव नहीं हो, तटस्थ भाव, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, ऑब्जर्वर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, स्पेक्टेटर। यहां कुछ हो रहा है इसको देखना है, यहां कुछ हो रहा है उसको देखना है, तो साक्षी भाव पुष्ट। साक्षी साक्षी हम कहते रहते, पर उसका मेथड क्या है? इस ड्रामा को साक्षी होकर देखो, दूसरी आत्माओं को साक्षी होकर देखो, अपने पार्ट को साक्षी होकर देखो, भगवान के पार्ट को साक्षी होकर देखो, ये सब हम सुनते हैं, पर करना क्या है उसमें? करना ये दो चीज़ें हैं, श्वास को देखना, आ रहा है जा रहा है, संवेदनाओं को देखना, कभी भी देख सकते हैं, जैसे ठंडा पानी गिर गया शरीर पर, एकदम संवेदना, पर एक होता है शौक, आह, एक होता है ये संवेदना है, अनित्य है, चली जाएगी। सिर दर्द हो रहा है, बहुत सिर दर्द तेज हो रहा है, उस सिर दर्द के प्रति साक्षी भाव कि ये एक संवेदना है ना, दर्द, दर्द, खुजली, स्वाद, ये संवेदना है, सारी सेंसेशंस है, और हर सेंसेशन का स्वभाव है ट्रांजिटरीनेस, अनित्य भाव, वो आज है थोड़ी देर में चला जाएगा। आपको पैर में सुबह सुबह बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, वो दर्द कम है, हमारा जो रिपीटेशन है उसके प्रति, बहुत दर्द, बहुत दर्द, बहुत दर्द, वो उसको दिन भर ले चलाता है, पर दर्द हो रहा है ये थोड़ी देर रहेगा, क्योंकि दर्द क्या है? संवेदना, और संवेदना है अनित्य, उसका स्वभाव ही है कि वो टिकेगी नहीं ज़्यादा समय, बादल आते हैं चले जाते, पक्षी आते हैं चले जाते हैं, गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, हम सड़क किनारे खड़े हैं, सुखद संवेदना, दुखद, और कुछ कुछ एरियाज आएंगे, जैसे यहाँ सुख सुखद हो रहा है, यहाँ दुखद, तो संवेदना को देखना है और आगे बढ़ना है, यहाँ देखना है आगे बढ़ना है। अब कुछ कुछ एरियाज शरीर में आएंगे जो डेड एरियाज है, न्यूट्रल, वहाँ कोई संवेदना नहीं है, बस आगे बढ़ जाओ, स्वीप एंड स्कैन, स्कैन एंड स्वीप, उसको देख के आगे बढ़ जाओ, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, और करते करते अनुभव होगा, क्योंकि हर बार हम जो बैठते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कई बार इसमें मन नहीं लगता है. सिट एंड ऑब्जर्व, ऊपर से नीचे नीचे. बाबा ने कहा है ना, जिन की तरह. जिन कहता है मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा. काम ये है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. क्योंकि हमारे शरीर में ही वासनाएं उत्पन्न होती है. क्रोध आता है तो चेहरा कैसा हो जाता है? उसी समय चेहरे को देखो, स्कैन करो, टुकड़ा टुकड़ा, एक एक इंच, ये एक्सप्रेशन चेंज होंगे. क्रोध आता है, श्वास कैसा होता है? उसने मेरे बारे में ऐसा कहा. देखना है उसको. हाँ, स्कैनिंग करना नहीं है, श्वास को देखना है. स्कैनिंग जो है वो उसके लिए तो बहुत एकाग्रता चाहिए, बहुत ज्यादा एकाग्र चाहिए, अत्यंत एकाग्रता. बिना उसके वो काम नहीं होता है. क्रोध आता है तो वो तो क्रोध मैनेजमेंट तो एक अलग ही सब्जेक्ट है. केवल क्रोध की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, हजारों चीजें करते हैं. जैसे क्रोध आया तो क्या करो, उल्टी गिनती करो, 199. एक बच्चा होता है मोटा सा, उसकी आदत होती है अपने जितने साथी है सबको पीटता है वो. उसके पिताजी कहते हैं उसको, सुनो बेटा बबलू, जब भी तुम्हें क्रोध आए उल्टी गिनती करना चालू करो, क्योंकि रोज आस पड़ोसियों की कंप्लेंट आती है कि तुम सबको पीटते हो. तो वो एक बार क्या करता है, एक बच्चे के छाती पर बैठ जाता है ऐसा तैयार, और गिनती करता है 199. पिताजी कहते क्या कर रहा हूँ, कहते गिनती पूरी होने के बाद मारूंगा इसको. मारना तो है ही, ये कहीं भाग ना जाए तब तक, क्योंकि पाठ क्या पढ़ाया है क्रोध मैनेजमेंट का, 199. और ये भाग गया तो काम पूरा नहीं होगा ना. तो ये सारी मेथड्स फेल होती है. क्रोध एक पागलपन है. क्रोध में अपना पिक्चर अगर हम ले ले और हमको बाद में दिखाया जाए कि ये तुम हो, तो हम कहेंगे मैं हुई नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, हम तो प्रेममयी आत्मा है, बड़े प्रेम स्वरूप. वो एक विकार है. लोग एंगर मैनेजमेंट पर क्लासेस कराते, एक आत्मा हमने ही अनुभव है, मेडिटेशन हॉल है, वहाँ पे क्लास कराया. किस पर? एंगर मैनेजमेंट. वो आत्मा, आत्मा ही कहेंगे, भाई बहन नहीं बता रहे, वो नीचे आई, आया आई, और उसका ड्राइवर नहीं आया था, तो वहीं पे चालू हो गए. उसको पहले ही बोला था, इतना चिल्ला रहे, और अभी अभी क्लास मिस के करा के आ रहे, एंगर मैनेजमेंट ऊपर मेडिटेशन हॉल में, और नीचे ही क्रोध चालू. तो क्लास और ये सब तो इसका धारणा से कोई लेना देना नहीं है. अमृत वेला व्यक्ति 9 बजे उठ के आए और अमृत वेला क्लास कराए, और सारे हॉल तालियों से गड़गड़ाहट, वाह क्या क्लास है. जो उठते नहीं थे अमृत वेला, वो अगले दिन से उठना चालू, और ये खुद नहीं उठता है. क्लास का और धारणा का कोई लेना देना नहीं है. क्लास कला है, वो एक आर्ट है. हाँ, वो एक अलग चीज है कि किसके जीवन में वो जो बोल रहा है वो भी है. और ये रेयर आत्माएं हैं. मराठी में कहावत है, बोले तैसा साले त्याची वंदना पाऊले, अंगे झाड़ी ना अंगन त्याचे दायित्व करी न. तुकाराम महाराज कहते हैं कि ऐसा अगर मुझे एक व्यक्ति मिल जाए कि वो वही करता है जो वो बोलता है, तो मैं अपने शरीर का झाड़ू बनाऊंगा और उसके आंगन को झाड़ूंगा. अगर मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए, अंगे झाड़ी ना अंगन त्याचे दायित्व, उसका दास बन जाऊंगा मैं, अगर आप मुझे बता दो. क्योंकि यहाँ कथनी करनी अलग अलग है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है. ऐसा संसार में है, परंतु हमारा ऐसा नहीं है. हम सब बाबा के जो बच्चे हैं, हम सब के जीवन से लोग प्रभावित होते क्यों? क्योंकि धारणा में ही है हर एक. तो ये दो अभ्यास है. तो हमारा टॉपिक था यही, बाहर है दुनिया को भूल जाने की. तो दुनिया अर्थात ये शरीर ही दुनिया है. सारा काम जो है ना, ऊपर से नीचे तक करना है बस, बाहर कुछ करना ही नहीं है. इस वस्तु वैराग अर्थात इससे वैराग नहीं है, इसको फेंक देना ये वैराग नहीं है. पैसों को चाहिए नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये वैराग नहीं है. वैराग अर्थात ये जो सुखद और दुखद संवेदनाएं हो रही है, इन दुखद सुखद संवेदनाओं को तटस्थ भाव से देखना। सुखद भी आया दुखद, फिर ये यहाँ तक ही मत छोड़ो शरीर कर। दूसरी संवेदनाएं, सुगंध, अच्छी सुगंध, दुर्गंध, सड़ांध, हम कैसा मुंह करते हैं, अर्थात क्या इसे स्वराज्य अधिकारी अवस्था कहेंगे। आवाज, सुखद शब्द, कोई हमारी स्तुति करता है तो आ हा 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 हा, इतनी खुशी होती है अंदर। कोई कहता है ये बहुत महान योगी है, तपस्वी है, कितनी खुशी होती है। उसको जाके पूछेंगे और क्या क्या है जरा बताओ जरा। और कोई कहता है नौटंकी, ढोंगी, ऐसे लोगों से फिर हम दूर भागते हैं। तो ये अध्यात्म में सर्वोच्च अवस्था जो है वो है समता, इक्वैनिमिटी। और पवित्रता की सर्वोच्च परिभाषा है पवित्रता अर्थात समता। सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, निंदा स्तुति, स्थित प्रज्ञ योगी, इक्विपॉइज, इक्वैनिमिटी। और इसी का अभ्यास श्वास को देखना है और संवेदनाओं को देखना है, पूरे शरीर को देखते रहना लंबा लंबा समय तक इसका अभ्यास। ये राजयोग की एक आधारशिला हो सकती है कि जिसके आधार पर हम शरीर से डिटैच होते हैं। और इसमें चिंतन शरीर का चल रहा है, पर शरीर का चिंतन करते करते हम शरीर से परे निकल जाते हैं अपने आप। ये संवेदना देखते 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 इंच 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 इंच, टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, पहले करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, पूरे शरीर में जैसे इतना घनत्व, इतनी स्थूलता है कि कुछ दिखता ही नहीं, फील ही नहीं होते सेंसेशंस। पर कुछ समय, कम से कम 3 से 6 मास का अभ्यास, 3 to 6 months डेली प्रैक्टिस, फिर एक 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 अंग अंग में संवेदना उत्पन्न दिखेगी, एक एक अंग में। और अभी जो टाइम लग रहा है ऊपर से नीचे तक, योगी जन एक श्वास में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर देते हैं, एक श्वास लिया और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। इसलिए ये कितना आश्चर्य है कि योगी लोग बैठे रहते हैं समाधि में, क्या उनको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती, बिना खाए पिए हिमालय में समाधि लेके बैठे। रामायण में दिखाया हुआ है कि श्री राम जब वन में गए तो ऐसे ऐसे योगियों से मिले जो 1200 साल से तपस्या कर रहे हैं, कोई एक ऐसे योगी से मिले जो खाली हवा पर है, ये सब वर्णन है। गिरिबाला का वर्णन है, बहुत सारे ऐसे योगी है। 1920s या 30s में एक योगी था, उसको ज़मीन के नीचे दफनाया गया, ठीक है, मिट्टी डाल दी गई, 6 मास के बाद उसको बाहर निकाला गया। पूरी भीड़ और इंग्लिश अंग्रेज़ी अफसर भी थे उस समय, उसका अखबारों में भी आया था, उसको निकाला, वो जिंदा था। अब ये प्रश्न है, खाना पीना तो है ही नहीं नीचे, दूसरा हवा भी तो नहीं है नीचे, फिर वो जिंदा कैसे था। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये लोग, इनके पास कुछ टेक्निक्स होती थी श्वास को रोकने की, श्वास को साधने की। और ये शरीर की जो सामान्य आवश्यकताएं हैं, भूख और प्यास और नींद, इनसे परे निकल जाते हैं। हाँ, इसका संबंध भगवत प्राप्ति से नहीं है और ये राजयोग भी नहीं है, हठ योग एक अलग ही चीज है, ये अलग चीज है, उसका अपना महत्व है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो। पर हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, कि वो हम अगर देखें, जैसे भूख लग रही है, अत्यंत तीव्र भूख लगती है, वो भूख भी क्या, एक संवेदना मात्र है, एक्चुअली वो भूख नहीं है, फॉल्स हंगर है, वो हमारी हैबिट है। जैसे किसी को 12 बजे खाना खाने की आदत हो गई है, तो जैसे 12 बजते हैं उसको भूख लगती है, पर अगर आप 11 बजे ही को 12 दिखा दो तो भी उसको भूख लगेगी। बजे 11 पर घड़ी को कर दो 12 तो वो देखेगा, अरे मुझे भूख लगी है। भूख के कम से कम फॉल्स हंगर बहुत सारा है, ट्रू हंगर बहुत कम है, शरीर को बहुत कम चाहिए, जो डाल रहे हैं वो आदत अनुसार। उसका कुछ वो दैट इज़ कॉल्ड फॉल्स हंगर, वो रियल नीड ही नहीं है, इसलिए बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा है। तो हम बात कर रहे थे वैराग की, पर वैराग की बात करना अर्थात घृणा उत्पन्न नहीं, केवल देखना है इस शरीर को, और दूसरा शरीर के जो भी सुख है उन सुखों को देखो, शरीर की वास्तविकता को देखो। हॉस्पिटल में जाओ, देखो उन शरीरों को, हॉस्पिटल, डायलिसिस पेशेंट। हमारी एक पेशेंट थी, उसको डायलिसिस चालू हो गया, उसके पति ने डिवोर्स दे दिया उसको, उसकी तो डेथ हो गई, उसने अभी दूसरी शादी भी कर ली, अब अपनी दूसरी बीबी को लेके आता है, इसका ये हो रहा है, उसको वो हो रहा है, हर हफ्ते में वो आना ही है उसको, और इसका थोड़ा अलग ही है, इसको सिर दर्द होता है, इसको कुछ होता है, इसको कुछ होता है। तो प्रेम तो शरीर से है मात्र। ब्रेस्ट कैंसर होता है डिवोर्स, हॉस्पिटल जाओ। तो आप बताएंगे ऐसे कौन कौन से स्थान है जहां जाने से वैराग उत्पन्न होता है, कम से कम 14 स्थान बताओ। पहला तो हमने बता दिया हॉस्पिटल, उसमें भी स्पेशली बर्न वार्ड। बर्न वार्ड देखा है किसी ने? हाँ दीदी ने देखा है। और बर्न, बर्न्स, जिसमें 50% बर्न, 40% बर्न, पूरा जला हुआ, अंदर जाने नहीं देते पहले तो, पूरा जाली होती है और चिल्लाते रहते हैं आ आ आ, दर्द। हमारे हॉस्पिटल में एक यंग फीमेल एक एडमिट हुई थी, उसके रिश्तेदार लेके आए 80% बर्न। 80% बर्न तो बचना असंभव है, बचते ही नहीं है, पर वो बची, उसके कुछ कारण रहे, क्योंकि वो रिश्तेदार आए, उसको एडमिट किया और वो लोग कहे हम लोग अभी थोड़ी देर में आते हैं, और वो गए तो आए नहीं कभी, जितने फ़ोन नंबर दिए थे सब फॉल्स, फेक। तो वो लेडी को हम भी क्या करें, वो हॉस्पिटल में ही रही, 8 मास रही, उसका लॉन्ग सर्वाइवल का एक कारण था क्योंकि कोई रिश्तेदार नहीं थे, नहीं तो रिश्तेदार आना जाना करते रहते, इन्फेक्शन और बढ़ता है, वो भी एक कारण बनता है। तो वो लेडी रही और उसको भी मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस, कभी कुछ तो कभी कुछ, उसकी ड्रेसिंग छोटी थी, इतनी पेनफुल ड्रेसिंग, पूरा ये छाती का पूरा हिस्सा जल चुका था, वो बैठ के ड्रेसिंग करते थे, 1 घंटा लगता था उसका, जो डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन थे वो करते थे, यहाँ का निकालते थे, और वो चिल्लाती थी वो जोर जोर से। तो बर्न वार्ड एक तो एक स्थान हो गया जिससे वैराग आता है, वो कौन सा है? हॉस्पिटल। दूसरा शमशान घाट, वहाँ तो डेली जाना चाहिए देखना है किस लिए? चिताओं को जलते, हम कहाँ गए थे? हाँ पशुपति, वहाँ पे एक साथ कितनी चिताएं जलती है। और भी कोई स्थान है ना? बनारस, चिताएं जलती है। महात्मा बुद्ध के पास भी जब कोई आता था नया सन्यासी, वो कहता मुझे सन्यास लेना है, वो कहते थे पहले 3 मास तुम शमशान घाट में रुको, काम क्या करना है? सुबह से लेकर रात तक चिताओं को जलता हुआ देखना है, बस और कुछ नहीं, एक ही काम है, चिताएं जल रही है। कैसे बचा पाओगे अपने आप को वैराग से? शरीर ही तो पागल करता है सबको। तो दूसरा स्थान शमशान घाट, तीसरा जेल, जेल में जाओ, उन कैदियों से मिलो। आप लोग गए हैं जेल में सेवा के लिए? नहीं, क्यों गए हैं? ये एक सेवा है, फिर पेंडिंग है आपका, ढूंढो कहाँ है जेल और जाओ। उनको बहुत राहत मिलती है कैदियों को, क्योंकि वो खराब लोग नहीं होते, अच्छे लोग होते हैं, बस वो 10 मिनट में कोई वेग आ गया, कोई पैशन, कोई वासना ने पकड़ लिया और उस 10 मिनट में वो काम कर दिया, कुसंग में आ गए इसलिए कर दिया, कोई मजबूरी थी इसलिए कर दिया। उसमें से सभी ऐसे दुर्दांत अपराधी नहीं होते, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, तो उनकी करुण गाथा सुनो, इतना दुख है संसार में, इतना दुख, इतनी पीड़ा होता है उनको सुनकर। ज्ञानामृत में भी कई अनुभव छपे हैं लोगों के। तो तीसरा जेल, चौथा हाँ वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम में जाके देखो, वहीं पर वृद्धाश्रम है जहाँ उनका बेटा रहता है, उसी शहर में, अपने माँ बाप को कहाँ रखा है, उसी शहर के वृद्धाश्रम में रखा है बेटे ने। कोई मिलने नहीं आता है महीनों महीनों सालों सालों तक, दुखी रहते हैं, सोचते हमने इतना सब कुछ किया, इन्होंने क्या किया। उस दिन भी कहा था ना शायद, एक पिता अपने बेटी को, उसने किडनी दी, किडनी खराब हो गई बेटी की, तो अपनी किडनी उसको दी, किडनी डोनेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ, और बाद में बेटी को किसी लड़के से प्यार हो गया, वो भाग गई किडनी लेकर। वृद्धाश्रम अगला, भूकंप जहां त्रासदी होती है, ऐसी एरियाज करुण पुकार आह उठती है लोगों की, वहां पर कितने सारे लोग डूब गए, मर गए, एक साथ मर गए, कहां अंदर वासना जन्म रहेगी, खत्म हो जाती है, वैराग आता है वो सब देखकर। इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा, डूब रहे लोग दर्द में है। अगला, हाँ, स्लम एरियाज, झुग्गी झोपड़िया, झोपड़िया ही झोपड़िया, मुंबई में एरिया है पूरा धारवी, इतना एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, इतना कंजेस्टेड सारा, कुछ नहीं है, बस उसी में रहना है, वही जीवन है। उनको भी देखकर वैराग आता है। अगला, हाँ, पागलखाना, मेंटल हॉस्पिटल, व्यक्ति अंदर से कितना सही दिखता है, एकदम सही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर दिमाग कुछ के कुछ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे तब वो एक मेंटल हॉस्पिटल में गए, और क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्राइम मिनिस्टर आ रहे, तो जो पागल ठीक हो गए थे उनकी छुट्टी थी उस दिन। तो उसमें से एक, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मुझे उन लोगों से मिलना है जिनकी छुट्टी हो रही है, आप उनके आने के अवसर पर ही ये प्रोग्राम रखा गया था कि जो अच्छे हो गए हैं, जिनका बर्ताव बहुत अच्छा है, अभी उनकी डिस्चार्ज है, तो उसमें से एक पागल नेहरू जी से मिला और कहा कि आप कौन हो, उन्होंने कहा मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ। उसने कहा एक काम करो, जब मैं आया था ना तब भी अपने आप को ऐसा ही समझता था, तुम भी इधर एडमिट हो जाओ, ठीक हो जाओगे, 3 महीने में ठीक हो जाओगे, मैं ठीक हो गया हूँ। तो वो जो लोग होते हैं उदास, डिप्रेस्ड, और ऐसे तो हमारे पास इतने सारे पेशेंट्स हैं, बात मत पूछो। एक लोकल ही पेशेंट, एक बहन माउंट के ही, इतना उदास, उसका पति इतना देवता है, देवता बिल्कुल, घर वाले उसकी सास से लेके सब कुछ, इतना उसके लिए सब कुछ करते हैं, वो खुद भी नहीं समझती है कि मुझे ऐसा क्यों होता है, मरने के ख्याल आते रहते हैं, उदास रहती है, कुछ चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। बीच में 7 दिन रखा, फिर बहुत अच्छी हो गई, काउंसलिंग सेशंस हुए डेली, गेम्स वगैरह, वो डायबिटिक कैम्प था, फिर छुट्टी किया, फिर 10 दिन ठीक रही, फिर से अचानक बेचैनी बेचैनी, इतनी सारी दवाइयाँ, 15-20 साइकेट्रिस्ट चेंज हो चुके हैं, पर बेचैनी होती है, घबराहट होती है, उदासी आती है, ये सब होता है। तो मेंटल हॉस्पिटल अगला, और अनाथ आश्रम अगला, हाँ, विकलांग, विकलांग, दिव्यांग, मधुबन में प्रोग्राम चालू है दिव्यांगों का, मनमोहिनी में 2nd फ्लोर पर, साउथ से उनके डायरेक्टर भी आए हैं और वो सारे बच्चे आए हैं और उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो कुछ परफॉर्म भी कर रहे थे हम आने से पहले वो, और रोड ने स्थान, पोस्टमार्टम, मॉर्चुरी, उसको क्या कहते हैं, मॉर्चुरी, डेड बॉडीज जहां रखी जाती है, और अच्छा, अपने माँ बाप का झगड़ा। संसार के आसपास ही देखो, स्कूल में एक बच्चा और एक बच्ची लड़ते रहते हैं, वो उसके बाल पकड़ता है, वो उसके बाल पकड़ती है। टीचर कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, वो कहते हैं हम मम्मी डैडी का गेम खेल रहे हैं। हमारे मम्मी डैडी ऐसा ही करते। और कोई स्थान? ये तो हो गया निगेटिव स्थानों की लिस्ट। क्या कोर्ट? हाँ कोर्ट के भी वाइब्रेशंस बड़े टेंशन वाले होते हैं, केस चलती रहती है, लंबी लंबी हियरिंग, ये वो, सच झूठ झूठ सच झूठ सच झूठ सच सच झूठ, गवाह खरीदे जाते हैं बेचे जाते हैं, पूछताछ, उससे भी वैराग आता है। ये तो हो गए सारे नेगेटिव स्थान। अब पॉजिटिव स्थानों की लिस्ट बताओ कि जिसमें जाते ही मन विरक्त तो हो जाए। मधुबन सेंटर, तीर्थ स्थान, इस टाइप के। और पॉजिटिव प्लेसेस, मंदिर? मंदिर गया है कभी? बंद कर दिया ना, वो हमारा काम नहीं, अज्ञानी लोग जाते ना ऐसे ना, वाइब्रेशंस कितने स्ट्रांग होते हैं, वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। जिन रात वो मंत्रों में जो पावर होती है ना, हमें याद है जब हम MBBS में थे तो जैसे ही वो गीत बजता था, हर हर भोले नमः शिवाय, ऐसा शरीरपन, इतना ऐसा, हम जैसे किताबें छूट जाती थी और हम मंदिर जाते थे। और वो एक पुराना शिव मंदिर था जिसपे वो चलते रहता था, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भो, वहाँ बैठ जाते तो अशरीरी हो जाते थे कितना कितना देर तक। बहुत पावर होती है। हमारे ज्ञान के गीत सब बहुत अच्छे हैं, पर उन गीतों में जो मंत्रों में जो पावर है वो एक अलग ही पावर है उसमें, सभी भक्ति के, क्योंकि वो ऋषि मुनियों ने एकदम ऊंची अवस्थाओं में उनके प्रकट हुए हैं वो सारे, इसलिए उसमें पावर होती है बहुत। तो एक तो मंदिर और तीर्थ स्थान, वो निगेटिव में आ गया। हाँ वो भी होगा, मॉल भी हो सकता है, सुपरमार्केट, जैसे सुकरात जो होता था, सोक्रेटिस, वो रोज मार्केट में घूम के आता था, लोग पूछते तो उनको लेना ना देना, तुम क्यों जाते हो, खरीदते तो कुछ नहीं हो, वो कहता मैं ये देखने जाता हूँ कि इन सभी वस्तुओं के बिना मैं कितना सुखी हूँ, ये स्टडी करने में रोज जाता हूँ। तो मार्केट में किस लिए जाना है, ये देखने के लिए कि ये इतनी वस्तु है, ये बिना इनके मैं खुश हूं, ये देखने के लिए जाए तो ठीक है, और क्या, और खरीदने जाए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, तो फिर हम और उनमें क्या अंतर। ये तो एक निगेटिव वाला, बट दैट इज ऑल्सो राइट, पॉजिटिव वाली पॉइंट्स। और हाँ, नदी किनारे प्रकृति, प्राकृतिक सौंदर्य, जब भी आप समुद्र के तट पर जाकर बैठो वैराग आता है, पहाड़ों पर जाओ वैराग आता है, नदी के पास बैठो वैराग आता है, बगीचा गार्डन, ये ऐसे जो स्थान होते हैं वहाँ पर बैठो तो अपने आप मन शांत होने लगता है और वैराग आता है। और ग्रंथालय और आर्ट गैलरी और कल्चर और कोई स्थान, एकदम मन खो जाता है, जैसे पेंटिंग्स है, उस पेंटिंग्स को हम देख रहे हैं तो मन खो जाता है, किस भाव दशा में वो पेंटिंग बनाई है पेंटर ने। जैसे विंसेंट वॉन गॉग था, विदेश का सबसे प्रसिद्ध पेंटर, पर उसके अपने जीवन काल में कभी उसकी एक पेंटिंग नहीं बेची गई, उसके मरने के बाद लोगों ने उसको जाना पहचाना, क्योंकि वो अजीब पेंटिंग रहती थी उसकी, दिन भर खड़े रहता था, सूरज का चित्र बनाते रहता था, उसके ना उसका कोई कमाई होती थी ना कुछ होता था, पैसे नहीं थे उसके, भूखे मरते रहता था। उसके भाई को बड़ी दया आई, उसके भाई ने क्या कहा, क्या किया, एक व्यक्ति को भेजा, उसको पैसे दिए और कहा जाओ इसकी पेंटिंग खरीदो, कोई खरीदता ही नहीं है। तो वो व्यक्ति गया और विंसेंट वॉन गॉग से कहा ये चित्र मुझे चाहिए आपका, कितने पैसे हो, ये लो पैसे। विंसेंट वॉन गॉग कहता है रुको, तुमने पेंटिंग देखी भी नहीं और ऐसे ही खरीद रहे हो, जरूर कोई गड़बड़ है, किसने भेजा तुमको। वो कहते तुम्हारे भाई ने भेजा, बोलते मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उस पेंटिंग्स में उसके प्राण थे, वो नहीं बिकी तो चलेगा, नहीं लोगों ने देखा तो चलेगा, वो और वो एक ही थे पूरे जैसे। तो एक कलाकार और उसकी कला एक हो जाते हैं, उसके प्राण होते हैं उसमें। तो ऐसे स्थान वहां पर भी वैराग आता है। तो ये सारे अलग अलग पॉइंट्स है। तो आज हमने पहले हम कल क्या कल के पूरे दिन भर में क्या क्या किया उसका वो बताएंगे आप। कल हमने क्या क्या देखा था याद करो, कल क्या क्या देखा था सारी एक्टिविटीज़ बताओ। एक एक्टिविटी तो चलने की थी, वो चलने से हमने क्या सीखा, अलर्टनेस। दूसरी एक्टिविटी थी वो कंचे को हाथ में पकड़ना और फिर उसको गिरा देना। तीसरी एक्टिविटी गार्डन में थी, क्या था क्या था, ब्लाइंड फोल्ड, आंखें बंद। उस दिन पट्टी नहीं थी, वो एक्चुअली पट्टी लगा के की जाती है वो, तो कल आंखें बंद करके, तो ब्लाइंड फोल्ड वॉक। उसके बाद में गेम्स थे दो तीन, बाबा बेबी और बॉल, ये एक गेम था। वॉक स्टॉप का एक गेम था। उसके बाद में एक ह्यूमन नॉट था, ह्यूमन नॉट, उसमें दो ग्रुप्स ने उसको किया, बाकी नहीं कर पाए, तो उसकी प्रैक्टिस करना है आपको, वो बहुत अच्छा गेम है। अगला, एक सर्कल में सब खड़े रहे और बीच में किसको इमर्ज किया, ग्लोब को और उसको सकाश। तो ये प्रैक्टिस भी आप अपने ग्रुप में घर पे सेंटरों पर करते रहना। और एक प्रैक्टिस की साइलेंट वॉक, एकांत में चलना, वो एक प्रैक्टिस की। उसके बाद में ग्रेटिट्यूड की एक प्रैक्टिस की, आकाश की तरफ दोनों हाथ। उसके बाद में क्लास में क्या क्या देखा कल, यहाँ स्मॉल लेटर में लिखना, वो एक देखा। और क्या देखा, हाँ शिफ्ट, तो अपने मन को आदेश देना है शिफ्ट। फिर हमने दो परिस्थितियाँ देखी थी, एक कन्याओं का ग्रुप इधर था, एक कन्याओं का ग्रुप इधर था। और एक अभ्यास देखा था हमने, बहुत सारे शब्द दिए थे और आपको क्या कहा था, वहाँ वहाँ पहुँचो, डायमंड हॉल, बाबा मिलन, इधर उधर, पहाड़ी, मधुबन, ट्रेन। तो यहाँ क्या किया हमने, माइंड को छल किया माइंड के साथ, अभी इधर अभी उधर अभी उधर अभी उधर। फिर हमने ग्रुप डांस भी किया था और उस ग्रुप डांस के बीच में अचानक कहाँ चले गए, परमधाम, और फिर नीचे। फिर और दृश्य इमर्ज किए कि बाबा ने कहाँ कहाँ मदद की जीवन में। और क्या देखा, मैं आत्मा हूँ, उसका भी अभ्यास देखा। तो अभी एक अभ्यास और करेंगे, कंचा है कल वाला, निकालो उसको। और अपने हाथ में पकड़ो उस कंचे को और संकल्प करो, जैसे यह कंचा अचल अडोल है, मेरा हर संकल्प अचल अडोल है, मेरी स्थिति अचल अडोल है। ऐसे हाथ कर लो और उस कंचे को पकड़ लो। अगर कंचा नहीं है तो वो जो टैली काउंटर है उसको ले लो या कोई भी वस्तु ले लो और मन में संकल्प करो। कि मेरी स्थिति इस कंचे की तरह अचल अडोल है और ये कंचा हमेशा मेरे साथ रहेगा। जब भी स्थिति डगमग हो इस कंचे को निकालना, हाथ में लेना और संकल्प फिर दोहराना, मेरी स्थिति अचल अडोल है। अनुभव करेंगे, मैं सूक्ष्म वतन में हूँ और शिव बाबा बाप दादा मुझे एक वरदान दे रहे हैं। मेरे सिर पर बाप दादा का वरदानी हाथ है। ओम शांति। हाथ नीचे कर देंगे। अभी एक दूसरा अभ्यास करेंगे लास्ट, उसके बाद में हम थोड़ा 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। लाइट ऑन। यहाँ से आपके बाजू में जो बहन बैठी है, अभी आपने जो वरदान लिया या जो भी वरदान, वो ही वरदान आप उस आत्मा को देंगे उसके कान में बोलकर। आप उनके कान में, आप उनके कान में, आप उनके कान में, आप उसके कान में, ऐसे करते करते करते, वो एक ही वरदान नहीं, अलग अलग, वो आप दूसरा देंगे। आपने जो सोचा वो इनको देंगे, आपने जो सोचा है वो इनको देंगे। स्टार्ट। कान में वरदान, कान में दिया जाता है मंत्र दे दो, नहीं आप तक आएगा वहाँ से, पहले आप इनको देंगे फिर आप इनको देंगे। स्टार्ट। आप लोग नहीं, यहाँ से चालू हो रहा है, खाली नीचे बैठने वाले जो है आप उनको देंगे, आप उनको देंगे। वही वाला नहीं, नया नया जो आपने बाबा से लिया वरदान सर्कल, ब्लेसिंग सर्कल इसको कहते हैं। एक ब्लेसिंग को घुमाना है। कान खींच के मत करना। हो गया लास्ट लाइन? नहीं उधर नहीं, बैठने वाले नहीं, नीचे वालों को ले लो, खाली बैठने वाले को कुछ और काम देंगे। जो बैठे वाले तब तक ये अभ्यास करते रहो, जो चेयर पे बैठे हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर दूसरी उंगली क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ब्रेन जिम, फिर तीसरा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तब तक अभ्यास करो, लिखना कुछ नहीं है इसमें, प्रैक्टिस करनी है। राइट एंड लेफ्ट ब्रेन कोऑर्डिनेशन, जो बैठे हैं वो भी कर सकते हैं। हो गए सबके वरदान? ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है, वरदान आपको बाद में पूछेंगे। तब तक एक लास्ट एक्टिविटी करते हैं। एक हाथ में घंटी लेंगे, घंटी बजाओ, अच्छे से बजाओ, बजी, अब नीचे कर दो। दूसरी हाथ में थाली ले लो आरती की, इसको घुमाओ, आरती की थाली, सभी 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 घुमाओ, हाथ नीचे। अब थाली और घंटी एक साथ घुमाओ, थाली और घंटी एक साथ घूम रही है क्या? ये नहीं करना है, अच्छे से घुमाना है, ये बराबर घूमे और ये अलग, दो हाथ को दो अलग अलग एक्शन से। इससे क्या होता है, ब्रेन कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, इसको कहते हैं ब्रेन जिम। अब हाथ चेंज करो, इसमें घंटी ले लो और इसको थाली बनाओ और दोनों एक साथ घुमाओ, उल्टा पुल्टा मत करना है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? प्रैक्टिस। अभी ये हाथ यहाँ लो और इसको ऐसे घुमाओ, ठीक है, हाथ नीचे, अब ये ऊपर नीचे, अब दोनों एक साथ, दोनों एक साथ ऐसे ऐसे नहीं, खाली ये भी घूमे साथ में, तो दो एक साथ, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रेन जिम। दो अपोजिट एक्टिविटी दो हाथों से। अभी लास्ट एक्टिविटी, अपनी डायरी खोलेंगे और उल्टे हाथ से लिखेंगे। कौन से हाथ से? उल्टे हाथ से। अगर राइट साइडेड है तो लेफ्ट से लिखेंगे, लेफ्ट साइडेड है तो राइट से लिखेंगे। लिखेंगे मैं आत्मा हूँ, अच्छे अक्षरों में लिखना, पर उल्टे हाथ से। उल्टे हाथ से लिखना है। कोई पेज या ऐसे कुछ है? वहाँ पत्र पुष्प, पत्र पुष्प नहीं है, शिव संदेश वगैरह, एक सिंगल पेज का कुछ, कुछ भी हो गया कि लिख के? दूसरों को नहीं देखना है, अपनी हैंडराइटिंग देखनी है बस। हो गया लिख के? हो गया ना? नहीं ये नहीं, एक ही चाहिए सो सबको अपना। कोई भी आपके पास कुछ है मोबाइल, मुरली या मुरली या कुछ, मुरली का कोई एक पैराग्राफ, कोई भी आज की मुरली का वरदान ले लो। चलो मोबाइल अगर है तो, या तो कुछ भी ले लो। एक लास्ट एक्शन, आज की मुरली का वरदान ले लो, या फिर कोई भी एक पैराग्राफ ले लो और उसको करो उल्टा। क्या करना है उसको? उल्टा, और उसको अभी पढ़ना है यहाँ से। जैसे ये है, जाएगा बन संयम वही, ऐसे उल्टा पढ़ना है। उल्टा करो वरदान, उल्टा पढ़ो, उल्टा उल्टा पढ़ना है, जोर से पढ़ो, या अपना ही लिखा हुआ कुछ उल्टा पढ़ो, नीचे से ऊपर चालू करना है, रिवर्स रीडिंग। अभी उसी पैराग्राफ को सीधा पढ़ो, सीधा करो उसको, जो उल्टा पढ़ा उसी को सीधा पढ़ना है। अब जब सीधा पढ़ेंगे तो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अभी पढ़ो एक बार, बहुत फास्ट पढ़ सकेंगे और अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो जब भी कोई मुरली का पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसको क्या करना है? रिवर्स रीडिंग करना है उसकी, उल्टा, उसको उल्टा पढ़ना है। और बड़ी मुश्किल होती है उल्टा। उल्टा मतलब जैसे अभी ये शिव संदेश है, तो इसमें ये चार पॉइंट्स है। उल्टा मतलब हमने ऐसा उल्टा किया और उसको यहाँ से फोर्थ पॉइंट के एंड से पढ़ना चालू किया, ऐसे 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 ऐसे, इसको कहते हैं रिवर्स रीडिंग। तो हमारे ब्रेन को जो है ना काम देना होता है, उसको खाली नहीं छोड़ना, उसको कुछ ना कुछ काम देना है, उसको कुछ ना कुछ याद करने के लिए देना। छोटे बच्चे होते हैं ना, हमारे ओपीडी में बच्चे आते हैं, उनको कहते हैं कविता सुनाओ, चालू हो जाते हैं, मछली जल की रानी है, बस चालू, तुरंत चालू हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? बाय हार्ट कर लेना, स्लोगन, वरदान, कविताएं, कुछ कुछ चीज़ें एकदम पूरा, जैसे बार बार रिपीट करेंगे ना तो वो अंदर चली जाती है। बूंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो बचपन में पढ़ लिया वो पढ़ लिया, वो अंधेरा पूरा अंदर चला गया। मराठों की कहानी उसकी अथक उसकी जबानी थी, कितने सारी सब लाइनें आ जाती है उसमें। तो कुछ कुछ चीज़ें पकड़ लेना है ताकि परिस्थितियों में वो काम आती है। अचानक इमर्ज होगी और वो काम आएगी, अचानक एक महावाक्य काम आएगा, जैसे वो डाकू जो था उसको काम आ गया ना एक परछाई, और वो छूट गया। तो कौन सा वाक्य कब काम आ जाए पता नहीं। ठीक है, तो अभी हम एक 10-15 मिनट ब्रेक लेते हैं, 12:30 बजे फिर मिलेंगे। ठीक है, एक और सेशन होगा और सेशन का टॉपिक है रोया ना करो। ओम शांति।